अब आप देखिए कि हमने हल्की सी वजाहत की ना अभी, और तिलावत जो है वो हमारे अंदर थोड़ी सी सोच पैदा कर रही है, तो फिर उसी से सोच लें कि जब हम कुरान पाक को वाकई समझने लग जाते हैं तो फिर उसका कितना गहरा असर पड़ेगा। तभी तो वो तिलावतें लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी और वो एक एक आयत के ऊपर रोते रहते थे। अब आप देखिए कि ओवरऑल हम इस इन आयतों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ बातें जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, वो बात ये है कि पहली बात है कि अल्लाह सुबहान तआला ने जिस तरह नमाज रोज़े का हुक्म दिया है और इबादत के तरीके सिखाए हैं, इसी तरह अल्लाह सुबहान तआला ये चाहते हैं कि हम कायनात पे गौर व फिक्र भी करें। हमारे यहाँ कुछ इस तरह का रिवाज बन चुका कि जिसको नमाज़ पढ़ता देखते हैं या दीनी रिचुअल्स की अदायगी करते हुए देखते हैं तो फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ये दीनदार है, और ऐसा समझना चाहिए। किसी को अच्छा काम करते देखकर अच्छा समझना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं रुकना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो मुसलमानों की कसरत नज़र आती है ना, अगर आप देखें तो उनका जो ईमान है वो तकलीदी ईमान बन चुका है। इन आयात में जो हमने अभी देखी, अल्लाह सुबहान तआला ने ईमान की बहुत सारी गुत्थियाँ खुलजा दी, गुत्थियाँ जो थी वो सुलझा दी, कि असल बात यह है कि एक बंदा जिस तरीके से कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, हज या उम्रा अदा करते हुए अल्लाह ताला की मोहब्बत महसूस करता है, इसी तरह इस कायनात में घूमते फिरते गौर व फिक्र करते हुए भी वो अल्लाह सुबहाना ताला तक पहुंच सकता है। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कायनात अल्लाह का फेल है, और अल्लाह के कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। अगर साइंस को या दुनिया के जो दूसरे उलूम हैं उनको कुरान और सुन्नत के साथ मिलाकर सिखाया जाए तो ये खूबी पैदा होती है जिसका इन आयात में तذکرہ है, और वो क्या है? गौर व फिक्र, तफक्कुर। सूरज, चांद, सितारे, ये क्यों पैदा हुए, किसने पैदा किए, इनका मकसद क्या है? साइंसदान अमूमन जब गौर व फिक्र करते हैं ना तो वो चीज़ों की हकीकत पे तो बहुत गौर करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज के दौर में ये तफक्करून फी खल्क़ समावाति वल अर्द तो हो रहा है, चीज़ों की असल में तो खो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पीछे चलाने वाला कौन है। एक छोटी सी मिसाल दूंगी आपको कि एक शख्स कहीं भी रहता है, जंगल में है, दूर से देखता है कि जब ट्रेन आती है स्टेशन पर तो इतनी बड़ी ट्रेन जो है वो एक सुर्ख लाइट के जलने पे रुक जाती है या सब्ज लाइट के ऊपर चल पड़ती है। अगर कोई इससे पूछे कि बताओ भैया तुमने क्या देखा, तो वो कहेगा कि सुर्ख और सब्ज लाइट में इतनी ताकत है कि इतनी बड़ी ट्रेन को इसने रोक दिया। ये एक बद्दू की, एक सीधे साधे इंसान की सोच होगी। दूसरा शख्स जो उससे थोड़ा सा अक्लमंद होगा ना, वो कहेगा अरे ये क्या बात है, इस लाइट का क्या मामला है, असल तो देखो ताकत उस शख्स के हाथ में जिसके हाथ में इंजन है, यानी ड्राइवर। वो कहेगा नहीं, असल ताकत जो है ना इस ट्रेन के ड्राइवर के हाथ में, कि जिसने सुर्ख लाइट को देखकर गाड़ी रोक ली और सब्ज को देखकर गाड़ी चला दी, ये उससे अगले दर्जे पे पहुंच गया, पहले से बेहतर है ना। आप देखें कि सिर्फ लाइटों का जलना जलाना जो है वही बात नहीं है, असल ट्रेन है। एक शख्स इसी पे आके रुक जाता है, ठीक है, एक इससे भी आगे बढ़ेगा, वो कहेगा, यानी वो थोड़ा सा फिलोसफराना जहन रखता है, वो क्या कहेगा कि देखो असल बात पता क्या है, कि ड्राइवर के हाथ में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बल्कि वो पुर्जे जो इसके अंदर लगे हुए हैं ना वो सारी चीज़ है, क्योंकि ड्राइवर रोकना भी चाहे लेकिन अगर गाड़ी ना रुके या उसके अंदर वो सारी चीज़ें ना होती जाएं तो फिर गाड़ी भी नहीं चलेगी। लोग कहेंगे वाह ये भी बड़ा अच्छा नुक्ता है। अब यहाँ पे आप आके देखें तो कुछ लोग रुक जाते हैं, इसको आप फलसफा कह लें, इसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन अल्लाह ताला हमें इससे आगे ले जाता है। यहाँ तक कि जो सोच है ना, गौर व फिक्र, तफक्कुर, इसके अंदर साइंस भी इन्वॉल्व हो गई। साइंस किस शख्स के हाथ में जिसने गाड़ी के पुर्जों पे गौर कर करा लिया, फलसफा उसकी मजीद कुछ गुत्थियां सुलझाने वाला हो गया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ मिसिंग है ना वो क्या है कि इस गाड़ी, इस ड्राइवर और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कौन है। गाड़ी भी मौजूद हो, चलाने वाले हाथ भी मौजूद हैं, और एकदम अल्लाह ताला उसको रोक ले, हार्ट फेल हो जाए, चलती गाड़ी उलट जाए, पलट जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा कि असल कुव्वत किसी और के हाथ में है। ये जो आखिरी दर्जा है ना, ये अंबिया कराम का दर्जा होता है। अंबिया कराम ने ना सिर्फ हमें इस कायनात की घुतियों को सुलझाने की दावत दी, बल्कि उन्होंने हमें अल्लाह से जोड़ा। साइंस पढ़ने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि शुरू हो बात दुनिया की चीज़ों से। देखो, ज़मीन घूम रही है या सब्ज़ा उग रहा है, कुछ लोग इसी पे खामोश होंगे। कुछ कहेंगे नहीं, ज़मीन की खूबी है, जिसमें एक बीज डाला तो उसने एक पौधा उगा दिया। कुछ उससे आगे जाएंगे कि नहीं, इससे बढ़ के किसान की भी बात है। लोग दुनियावी सारी चीज़ों में उलझे ही रहते हैं और नहीं पहुंचते तो रब तक नहीं पहुंचते। आज मीडिया, साइंस, दुनिया की तरक्की जिन जहनों और जिन लोगों के हाथों में है ना, उन्होंने इस कायनात पे खूब गौर किया। आप देखें, एक एक पत्ते पे बात होती है, इसमें क्लोरोफिल कितना है, इसमें पानी कितना है, ये सूरज के साथ कैसे मिलता है, ये सर्दी में काम कैसे करता है, पत्ते पीले क्यों होते हैं, फिर ब्राउन क्यों हो जाते हैं, सब बातें हैं। लेकिन जो तार कटा हुआ है ना, वो क्या है कि यतफक्करू नफी खल्किस समावाति वल अर्ध के बाद उस कुरुल्लाह का, यानी अल्लाह से नहीं जोड़ते। तो दो टर्म्स हमारे सामने आ गई, एक है जिक्र और एक है फिक्र। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ जिक्र करते रहो, मुराद है कि अल्लाह को याद करते रहो। इसको आज के दौर के आप दीनदार लोग कह सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच के साथ ये सब बातें करते हैं। उनका हाल क्या है कि बस सुबह मस्जिद, मस्जिद से घर या मस्जिद से मदरसा, और दैट्स इट। आप कहते हैं मौलवी साहब, क्या बच्चों को साइंस पढ़ानी चाहिए? वो कहते हैं तौबा करो, ये तो काफिरों का इल्म है। बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए? नहीं, तौबा करो, ऐसा कुछ ना करो। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने आपको एक छोटे से स्नैरियो में ढक दिया। उन्होंने सिर्फ कुरान से ताल्लुक जोड़ा। वो कहते हैं आओ पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, गौर करना है तो आयतों पे करो, देखो ये मक्की आयतें, ये मदनी आयतें, ये दिस दिस दिस। अब दूसरी तरफ गए लोग कहते हैं ये क्या हुआ भाई, सिर्फ कुरान पढ़ते रहेंगे तो दुनिया के काम कैसे चलेंगे? मिसाल है कि आज अगर लोग चांद पे जाना चाहते हैं तो कुरान में कोई एज इट इज़ तरीका तो नहीं लिखा हुआ कि ऐसी मशीन बन जाए कि चांद पे जाएं। अब हुआ क्या कि ये लोग एक कोने पे चले गए। इसके ऑपोजिट रिएक्शन में एक दूसरा ग्रोह उठा। उन्होंने कहा छोड़ो, ये तो मौलवी हैं, इनको तो हर वक्त बस पढ़ना पढ़ाना है, इनको क्या पता दुनिया कहाँ जा रही है। उन्होंने क्या किया कि साइंस को इतना आगे कर दिया और उन्होंने दुनिया की चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, वो तालीम जो हमारे अपने बच्चे, हमारी नस्लें सुबह से लेकर 5-6 बजे तक हर दिन 8-9 घंटे पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? वो दूसरे ग्रोह की बातें पढ़ते हैं। ये गौर करो, जियोलॉजी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है, अब ये पढ़ रहे हैं। और जहाँ बात आती है खुदा की, खुदा वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये सब नेचर है, ये मदर नेचर है, सब चल रहा है, पहिया घूमा और घूम गया। नतीजा क्या हुआ कि दुनिया में इस वक्त दो तरह के लोग दिखे, एक जिक्र करने वाले अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो साइंस पे गौर नहीं करते, और दूसरे सिर्फ फिक्र कर रहे हैं लेकिन उनका जिक्र से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ने इस रुकू में सूरत के खात्मे पे उम्मते मुस्लिमा को एक पैकेज दिया है, एक मनहज दिया है, और वो क्या है कि यतफक्करू नफी खल्क समावाति वल अर्ध से पहले यस्कुरून अल्लाह कर लो। इसके लिए क्या करना होगा प्रैक्टिकली, इसको आप देखें, इस वक्त अगर मुसलमान दुनिया से पीछे लगते हैं, हम कहते हैं ये हमारा इस्लाम है जो लोगों को पीछे रखता है, ये दीन तरक्की के रास्ते में रुकावट है। आज हमारे पास ऐसा तबका पैदा हो चुका है जिनका ख्याल क्या है कि बस सारी कमजोरियों की वजह इस्लाम है। लोग इस्लाम छोड़ेंगे ना तो मॉडर्न होंगे, लोग इस्लाम छोड़ेंगे ना तो तरक्की करेंगे। तरक्की रास्ते में रुकावट, पर्दा रास्ते में रुकावट, नमाजें रुकावट, दाढ़ी रुकावट, ये बिल्कुल झूठ है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में वो वक्त भी मुसलमानों को दिखाया कि जब मुसलमानों की यतफक्करून वाली चीज़ों पे भी ग्रिप थी। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात नहीं हो कि साइंस के नॉलेज के मूजत इन्वेंटर्स या उसको शुरू करने वाले मुसलमान हैं। आप लोगों ने नाम सुने हो कुछ साइंसदानों के, अल बेरूनी कौन था, अल हैसम कौन था, मुसलमान थे। ये जो डाइसेक्शंस है जिसको सर्जरी बोलते हैं, इसके मूजत मुसलमान हैं। मुसलमान जब तक दोनों चीज़ों में काम करते थे ना, तो वो दुनिया के लीडर थे, पायनियर्स थे, दीन दुनिया साथ चली। कभी मौका मिला इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे आपको मुस्लिम हीरोज़ या किसी अलग कोर्स में कुछ लोगों के हालात ज़िंदगी बताएंगे। जब से मुसलमान सुस्त हो गए, उन्होंने दुनिया के अंदर इतने अपने पाँव फैलाए, उनको अपनी ज़ात से फिक्र ही नहीं दूसरी चीज़ की तरफ। उनको माल अच्छा लगता है, उनको अपनी ज़ात अच्छी लगती है, अपनी सेहत अच्छी लगती है, वो कहते इस्लाम जाता है तो जाए। जूं ही हमने कुर्सी खाली की ना मुसलमानों ने, तो खाली तो कभी कुर्सी नहीं रहती। वहां वो लोग आगे जो लादीनियत का शिकार थे, जो खुदा फरामोश थे, जो एथियस्ट थे, उन्होंने अब इस वक्त साइंस पे पूरी ग्रिप ले ली। आप देखिए कि ये लोग अगर बड़ी बड़ी शटल्स भेजते हैं फिजा में तो कैसे भेज देते हैं? अनथक मेहनत करनी पड़ती है। वो रातों को जागते हैं, वो दिन को जागते हैं, वो एक सैंडविच खा के भी कई घंटे काम करते हैं। हमें हर चंद घंटे के बाद खाना खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। नतीजा क्या हुआ कि इस वक्त मुसलमानों ने ये फ़िक्र और ज़िक्र का ताल्लुक तोड़ा हुआ है। हम सबको आए अपने लिए अमल लेने के लिए इस बात में से जो बात समझ आती है वो क्या है कि कुरान और साइंस में कोई क्लैश नहीं। ज़िक्र खालिक का करना है, तफक्कुर मखलूक पे करना है। इबादत सिर्फ मस्जिद में नहीं होती, इबादत किसी लेबॉर्ट्री में भी हो सकती है, इबादत किसी स्पेस शटल में बैठ के भी हो सकती है। देखिए कि इबादत की जो रूह होती है ना, वो मोहब्बत है। सिंपल सी बात एक और समझ लें, अपने बच्चों को बताना बहुत आसान हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। इबादत की जो रूह है ना, वो मोहब्बत है। चलिए मोहब्बत को डिस्कस करते हैं। क्या कभी किसी को ये कहना पड़ता है कि मुझसे मोहब्बत करो? नहीं कहना पड़ता। मोहब्बत तो दिल से उठती है ना, जज्बा दिल से उठता है। अब दो लफ्ज़ हैं, एक है इबादत और एक है मोहब्बत। मोहब्बत के लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, तो क्यों फिर यही मोहब्बत जिस इबादत की रूह है उसके लिए हमें बार बार कहना पड़ता, उठो नमाज पढ़ लो, उठो नमाज पढ़ लो, जाओ जुम्मे के लिए, जाओ रोज़ा रखो, जाओ ये करो, करना पड़ता है कि नहीं? बच्चों को तो छोड़ें, बाज़ तो मर्दों को भी कहना पड़ता है और बाज़ औरतों को भी कहना पड़ता है। वजह क्या है? आज क्यों हमारी नस्लों का और हमारे छोटों और बड़ों का इबादत में दिल नहीं लगता कि हमने इबादत की रूह मोहब्बत को ख़त्म कर दिया? और इबादत के लिए जो मोहब्बत ज़रूरी है ना, वो कायनात के अंदर गौर व फिक्र से मिलती है। एक एक पत्ता बोलेगा कि अल्लाह से मोहब्बत करो, एक एक डाली, एक एक फूल, एक एक पहाड़ बोलेगा कि मैं एक इतनी बड़ी ज़ात का शाहकार हूँ। फ़न पारे, शाहकारे, आपने बड़ी बड़ी नुमाइशें देखी होंगी मुसव्वरी की, लोग पेंटिंग्स करते हैं, कहीं आपने कुछ और देखा होगा, लोग कहते हैं वाह क्या हाथ है, उनको चूम लें, क्या आइडिया है। कुछ भी रंग फेर देना एंटीक के नाम पे या एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे, लोग कहते हैं क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है। और बाद में ऐसे लगता है सिर्फ ब्रश के साथ रंग फेर लाए हुए हैं, लेकिन बस वो अंदर से कुछ देख रहे हैं। आपको सब बातें पता होंगी जो अमूमन इस वक्त मॉडर्नाइजेशन की दलील है। अल्लाह कहता है कि एक बंदा इस कायनात में जब चले फिरे, अल्लाह की अजमत का नक्श उसके दिल पे हो। और अल्लाह की अजमत का नक्श जब दिल पे पड़ जाता है ना, तो उसकी हिद्दत और उसकी हरारत से सारे झूठे माबूद पिघल जाते हैं, फिर कोई उस दिल में आ नहीं सकता। अल्लाह के कमाल और अल्लाह के जमाल के आगे किसी की अजमत नहीं आती, किसी बड़े की, किसी ताकत की, किसी इदारे की, किसी बड़ी बिल्डिंग का सहर नहीं आता। अब जब अल्लाह की मोहब्बत आती है ना दिल में, तो उसके कुछ असरात होते हैं। पहला असर क्या होता है कि इंसान को अपना आप हकीर लगता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ज़ात छोटी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो ना लफ्ज़ इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एहसास कब पैदा होता है? जब बंदा इस बात को रियलाइज कर लेता है कि ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तू बड़ा, तूने फूल बनाए, तूने पत्ते बनाए, तूने दरिया समंदर बनाए, मैं बड़ी छोटी हूँ। अब जब ये होता है ना, तो जब आप छोटे हैं तो छोटा बंदा बड़े के आगे झुकता है ना, आप बॉस के सामने झुकते हैं ना, हम अपने शौहरों के सामने झुकते हैं ना, चाहे दिल से झुकें या ना झुकें, बच्चे माँ बाप के आगे झुकते या झुकाए जाते हैं ना, क्योंकि वो छोटे हैं। और जिनको आप बड़ा बना दें वो नहीं झुकते। आज तरबियत के अंदाज में बच्चों को बड़ा बनाने का अनसर है, पैदा होने से पहले ही कहते हैं तुम बड़े हो हमारे, तुम जो कहोगे वो होगा, तुम जो कहोगे पकाएंगे, तुम्हारी जात, तुम्हारा घर अच्छा। हमने तो बच्चों को भी सरों पे उठाया। पहले दौर में क्या होता था कि माँ बाप ऊंचे थे, अब मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन जो मैंने मारूफ पाकिस्तान के आखिरी घर देखे कि माँ बाप का रूम नीचे होता है मास्टर बेड के नाम पे, चले इसलिए भी होगा बूढ़े हैं हो जाएंगे बाद में तो ऊपर नहीं जाना का, और बच्चों को सर पे बिठाते हैं, बच्चों के कमरे ऊपर होते हैं। फिजिकली हर तरह से हमने ये चीज़ दिखा दी कि तुम अहम हो। अब हुआ क्या कि जब अल्लाह की मोहब्बत आई, हमें पता चला कि नहीं मैं हकीर हूँ, मैं छोटी हूँ। जितना बंदा अपने आप को छोटा करता जाता है ना, उतना अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी हो जाती है। फिर लोगों से नज़रें हटती हैं, फिर इंसान को ये कायनात एक खुली हुई किताब दिखती है, मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि अल्लाह की तौफीक से मेरे दिन के कई घंटे इस कलाम के साथ गुजरते हैं, लेकिन मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि जब मैं इसके अलावा आने में, जाने में, सैर में, बाहर देखती हूँ, मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी और काम में हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, ये मैं अपने कल के सबक की तैयारी कर रही हूँ। ये चीज़ें जो मुझे आज यहाँ दिख रही हैं, ये खुद ही मेरे दिल में आएंगी कि अल्लाह तूने मेरे लिए तो इतनी तफसीरें खोली हुई हैं इस कायनात में। पीला फूल, सब्ज पत्ता, ये कहाँ से आ गया? कल ये नहीं था, आज ये हो गया। हर दिन आते जाते रस्तों में देखती हूँ, आज ये बिल्कुल छोटी सी कली है, दूसरे दिन उठे तो थोड़ी खुली हुई है, तीसरे दिन देखते हैं वो पत्ते हैं, और अब देखें तो लगता ही नहीं, एक हफ्ता पहले वो ब्राउन टहनियों के अंदर छोटी छोटी कुंपलें थी, वो इतना सब्ज हो गया। ये खुद ही हो रहा है। और जब ये सब होता है ना, तो अल्लाह से मोहब्बत के फिर इससे एक अगला स्टेप होता है, और वो क्या है कि माँ खलक तहा सा बातिला। ये इससे थर्ड स्टेप है कि अल्लाह तूने बेमकसद नहीं पैदा किया। फिर इंसान को इस कायनात की मकसदियत समझ आती है, अपना भी बामकसद होना और कायनात का भी बामकसद होना। फिर इंसान पिकनिक पे जाए, सैर पे जाए, गेट टुगेदर्स में हो, समंदर पे जाए, स्केटिंग करे, स्की करे, वो हर जगह जाके कहता है अल्लाह ये बेमकसद नहीं है। घास का एक तिनका भी उठा के बंदा कहता नहीं अल्लाह ये बामकसद है। और जब वो सारे फायदे देखे ना जो कायनात से मिल रहे हैं, तो उसकी तान टूटती है इंसान पे। सब चीज़ें खिदमत कर रही हैं इंसान की, सर्व कर रही हैं इंसान को। जब ये जज्बा आता है ना, तो फिर उसके बाद इंसान को अपना पहम लगता है, पहले झुकता है, अल्लाह को देखता है, अल्लाह की कायनात पे गौर करता है, तो बंदा टूटता है। कायनात को अपनी खिदमत करता देखता है तो अंदर एक जज्बा उभरता है, वाह मैं इतनी अहम हूँ। घर में भी आप किसी को अपने लिए बहुत काम करता देखें, या शौहर बीवी के लिए बहुत सामान ला रहे हैं, घर सजा रहे हैं, तो एक फीलिंग आती है ना शादी के बाद, लड़की को क्यों लगता है कि मैं अहम हूँ, क्योंकि हर बंदा उसको एंटरटेन कर रहा है। इस कैफियत से जो जज्बे उभरते हैं ना, उसका दूसरा नाम है शुक्र। आजजी से शुक्र कैसे मिला? आपने देखा कि मैं इतनी अहम हूँ कि रोज सूरज मेरे लिए निकलता है, मैं इतनी अहम हूँ कि बारिश मेरे लिए हुई, ये पत्ते मेरे लिए। नतीजा क्या हुआ कि सबसे पहले दर्जे पे शुक्र उभरता है। चलिए अब यहाँ ना रुकिए। शुक्र जब निकलता है ना, तो उसके अंदर से फिर एक और जज्बा निकलता है, और वो है जिम्मेदारी का। चूंकि सारी कायनात मेरी खिदमत कर रही है, तो अब मैं भी तो कुछ करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मिसाल ऐसी है कि कोई मेहमान आप कहीं मेहमान बन के जाएं, घर वाला आपके लिए पूरा एहतमाम करे, या आपके लिए बहुत खिदमत करे, खातर करे, आपके लिए बहुत सजाए, तो आपके दिल में कुछ फीलिंग्स आती है ना कि अब मैं भी इसका हक अदा करूं, चलो इन्होंने खाना पकाया तो मैं खा लूं, तारीफ कर लूं, इन्होंने इतना अच्छा सजाया तो मैं कुछ तोड़ ना दूं। केयरलेस एटीट्यूड नहीं रहता जब आप लोगों को केयर करता देखते हैं। कोई आपके लिए केयर करे ना, तो आपको हर वक्त ये धड़का होता है मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं कि इसका दिल टूट जाए, ऐसा ना हो कि ये मेरी वजह से यानी दुखी हो जाए। इससे फिर बंदे के अंदर जिम्मेदारी होती है, और जब बंदा जिम्मेदार हो जाता है ना, तो फिर उसके अंदर एक और सोच आती है कि अल्लाह जब हर चीज़ बामकसद है, तो फिर मैं भी बामकसद रहूं। फिर उसके बाद जुबान पे दुआ आती है कि फ़कीना अज़ाबन नार, आज इस दुनिया में तो मैं बड़ी बनी हूँ, तूने इस कायनात को मेरे आगे झुका दिया, मुझे मलका और रानी बना दिया, कल ऐसा ना हो कि सब के बीच में तो मुझे जहन्नुम का ईंधन बना दे। इसलिए फिर बंदा मोमिन पुकारता है कि वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, ए अल्लाह वहाँ रुसवा ना करना, यहाँ लोग बड़ा अच्छा समझ रहे हैं मुझे, मेरी वहाँ ज़िल्लत ना हो जाए, ए अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना। और फिर अल्लाह का खौफ पैदा होता है, इससे फिर अल्लाह का खौफ पैदा होता है। फिर अल्लाह का खौफ बंदे के पाँव पकड़ लेता है, वो फिर लोगों के लिए नहीं काम करता, वो अल्लाह के लिए काम करता है। जिसकी फितरत जो मसख नहीं हुई होती ना, वो इस दर्जे पे फिर हर उस पुकार को कबूल कर लेता है जो उसको जहन्नुम के अजाब से बचा के आखरत की रसवाइयों से महफूज कर देती है। नतीजा क्या होता है कि फिर सबसे ज़्यादा फिक्र पड़ती है तो अल्लाह की फिक्र होती है। फिर वो ये नहीं कहता कि मैं अच्छी बीवी हूँ कि नहीं, मेरा शौहर मुझसे खुश है कि नहीं, गो के वो इसको भी कोशिश करता है अल्लाह के हुक्मों के अंदर रहते हुए, लेकिन इसको जान का नासूर नहीं बना लेता। अच्छी बेटी हूँ कि नहीं, अच्छा शौहर हूँ कि नहीं, वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नबी के उसमें में रहकर सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि मैंने अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि उसको पता है कल मुझसे पूछा जाएगा कि तुम मेरी बंदी बनी थी कि नहीं। कई लोगों की शादी नहीं होती जिंदगी में, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम बीवी बनी थी कि नहीं, कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते, कल कहीं नहीं पूछा जाएगा बताओ भी तुम माँ क्यों नहीं बनी, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि बताओ तुम बंदे किसके थे। اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میری عبادت کی کہ نہیں کی، اور پھر ایسے وقت میں ایک بندے کے اندر وہ ایمان بھرتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سوچا سمجھا ایمان۔ ایمان کے بھی دو ہی درجے ہیں، ایک ہے تقلیدی ایمان، غیر شعوری ایمان، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بون مسلم ہے، خاندانی سطح پہ سوچتے ہیں، رواجی اسلام ہے، ان کانشیس ایمان ہے، انہیریٹڈ ایمان ہے، ہاں۔ اور دوسرا ایمان ہوتا ہے سوچا سمجھا ایمان، شعور کے ساتھ ذاتی سطح پہ قبول کر کے، اللہ کی بڑائی کو محسوس کر کے۔ کچھ لوگ تقلیدی ایمان پہ ہوتے ہیں، اللہ زندگی میں حادثہ ڈال دیتا ہے، رخ پلٹ گیا، ایمان کی حقیقت سمجھ آئی تو چل پڑے۔ یہ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا اور جتنی دعائیں نا، یہ کوئی تقلیدی ایمان والوں کے دل سے نہیں نکلتی، چاہے وہ ہر روز فجر پہ پڑھ لیں، یہ دعائیں نکلتی ہیں ایک اس مومن کے دل سے جو ایمان کی حقیقت سمجھ چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہر کام کے اوپر اللہ کے نبی اور اللہ کی مہر لگوانا چاہتا ہے، ویریفائی کرتا ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ جو ہیں اللہ کی طرف دن رات پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ایمان کیسے کمایا جاتا ہے، ایمان کو کمانے کے طریقے یہ ہیں کہ اس کائنات پہ غور کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل عقل یہی ہے کہ انسان فطرت کو مسخ نہ ہونے دے، پھر اس کے بعد عقل اور فطرت میں تضاد نہیں رہتا۔ ایک چھوٹی سی بات طرح مشکل لگے گی آپ کو، لیکن فائدہ ضرور ہوگا اس کا انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ ہیومن نیچر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک ہے فطرت اور ایک ہے عقل، دو لفظ سنے ہوئے نا۔ فطرت کو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں اور اکثر قرآن پاک میں پڑھاتے پڑھتے ہوئے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فطرت اللہ کے حکم کی بندھی ہوئی ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ عقل جو ہوتی ہے نا وہ دلیل کے ساتھ بنتی ہے۔ مثال دوں گی، ایک گھر ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت ہے، فطرت بتاتی ہے کہ یہ بھائی اور بہن ہے، فطرت بتاتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، ایک فطری حیا ہے، لیکن اس کو آپ عقل سے نہیں ثابت کر سکتے۔ آپ جب عقل سے ثابت کرنے جاتے ہیں نا تو بہک جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے، میں نام نہیں لوں گی، خود کو مسلمان کہلاتا تھا، اس نے ایک فلسفہ پیش کیا، کہنے لگا کہ آج کے مسلمان کتنے بیوقوف ہیں، کہ اپنے گھر میں کتنی اچھی لڑکی ہوتی ہے جو اس مرد کا مزاج بھی سمجھتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ پلی بڑی ہے، اس کی عادتیں اس سے ملتی ہیں، اس کو اس کی شارٹ کمنگ سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے کسی دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں، اور باہر سے ایک ایسی لڑکی کو لے آتے ہیں جس کی عادات کا نہیں پتہ اور کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور وہ گھر والی لڑکی بہن ہے، ان کے خیال میں ایک بھائی اور بہن کی شادی کرنے میں کیا حرج ہے۔ عقل کہہ رہی ہے جیسی ایک عورت ہے ویسی بہن ہے، جسمانی طور پہ فرق نہیں، لیکن فطرت وہاں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج انسانیت جس تیزی سے بہیمیت کی طرف جا رہی ہے نا، اینیمل لیول پہ جا رہے ہیں اب لوگ، رشتوں کی تمیز ختم، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سونے میں، جانے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عقل فطرت سے کٹ گئی۔ جب عقل فطرت سے کٹتی ہے تو بہت عیار ہو جاتی ہے، ہوشیار ہو جاتی، پھر وہ لب نہیں رہتی، اولول الباب کی زد سے نکل کر، چاہے وہ دنیا میں انسان بہت بڑا کوئی آرٹسٹ مشہور ہو، سائنٹسٹ مشہور ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ ہو، اللہ کی نظر میں وہ اولول الباب نہیں رہتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو دل چاہے کرو، آج یہی تو کلچر دیا جا رہا ہے نا، جیسا چاہو جیو، جو چاہو کرو۔ دیکھیے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں، دنیا میں بہت بڑے عقل مند لوگ گزرے ہیں، ہمارے تو اس علاقے کے قریب ایک ایسی مثال موجود ہے، انتہائی عقل مند شخص تھا، اس نے فیصلہ کیا یہ بڈھے لوگ تو ایسی دھرتی کا بوجھ ہے، ایک صف میں رکھ کے سب کی گولیوں سے گردنیں اڑا دی تھی۔ آپ کو پتہ نہ ہو، مجھے اس کا نام پتہ ہے، کیا تھا، چھوڑو انہوں نے اب کرنا نہیں، نہ انہوں نے جوان ہونا ہے، نہ یہ کر رہے ہیں، تو ان کو ختم کرو، اس نے سب بڈھوں کو ختم کر دیا۔ آج کے دور میں جن لوگوں کا میڈیکل لائن سے تعلق ہے، جا کے پوچھیں، جو بوڑھے لوگ مشینوں پہ ہوتے ہیں ان کو کچھ دن کے بعد مشین چاہیے، دوسرے کو لینی ہے، اس کو نکال کے مار دو۔ عقل یہ بتا رہی ہے، یہ ہوشیاریاں عقل بتاتی ہے۔ فطرت کو لیں گے وہ کہے گی نہیں، یہ جو اس قومے میں گیا ہوا ہے، یہ اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور بڈھوں کو ماریں گے تو انسانیت کہاں چلی جائے گی، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کہاں چلی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دجالیت اور اس دنیا کے مٹیریلسٹک نظام سے نکال کر غور اور فکر اور تفکر کے نظام پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ غور کرو، اب جس بندے کو صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت یہ سبق پڑھا دیا جائے، کیا اس کی زندگی میں اس کا اثر آئے گا؟ کیا اس کائنات میں جاتے ہوئے وہ ہوگا کہ کوئی نہیں، خیر کرو، عیش کرو، فن کے لیے آئے ہیں، پکنک ہے، سمندر پہ آئے ہیں، जैसा देश वैसा भेद। मैं सोचती हूँ बंदे मोमिन 24 घंटे का स्टूडेंट होता है। मैं तो अपने आप को समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म बहुत कम है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरा हर एक उस्ताद है, छोटों से भी सीखा बड़ों से भी सीखा, ये सोच कर के दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दिल से निकली हुई बातों को हमारे सामने ला के कहते हैं कि जब लोग इस दर्जे पे तफक्कुर करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उनको रुसवा नहीं करता। बाकी रह गया कि तफक्कुर की मिसालें, हजरत हसन बसरी कहते हैं कि तफक्करु सातिन खैरु मिन क़ियामि लैलतिन, एक घड़ी का आयाते कुदरत पर गौर करना, यानी कायनात की निशानियों पे गौर करना, पूरी रात की इबादत से बेहतर और ज़्यादा मुफीद है। किसी को हम गौर करता देखें तो हम कभी सोच भी सकते हैं ये इबादत कर रहा है, हालांकि रिवायत में आता है बेहतरीन इबादत जो है वो कायनात पे गौर है। हम कहते हैं जहाँ जाएँ जानमाज साथ ले लें, मसल्ला पढ़ करना है, अच्छी बात है, मैं इसका बिल्कुल इस्तेहजा नहीं करूँगी, लेकिन ऐसे लोग एक शेल में बंद हो जाते हैं, वो इंसानों की दुनिया में नहीं जी सकते।